ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अवसरों वाला देश है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वायदा भी किया है। श्री मोदी ने कल इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में निवेशकों से नवाचार, श्रेष्ठ निष्पादन, सकारात्मक पहल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मजबूत इरादों, उम्मीदों और विश्वास के साथ की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सफलता की अनूठी गाथा लिख रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधार अब अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होने लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के अपने मंत्र के साथ लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में सफल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नव मध्य वर्ग उभरा है। इनकी जरूरतें विकास को गति दे रही हैं और बाजार में मांग बढ़ा रही हैं। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष एप्पल भी नया फोन भारत में बनाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण वर्ष 2013-14 में 29 अरब डॉलर था, जो 2022-23 में बढ़कर 105 अरब डॉलर हो गया है। केंद्र ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 जारी कर दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस नीति से देश में जैव निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह नीति निजी भागीदारी से लागू की जाएगी और इससे रोजगार सृजन भी होंगे। जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री से देश की भावी जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक वृद्धि पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगी। मंत्रिमंडल ने बायो नीति को हाल ही में स्वीकृति दी थी। केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसे डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात कर वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए प्रस्तावों का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन परिषद के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया। सीमा सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस GRP ने त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेश के 7 नागरिकों और 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। पिछले 3 महीने में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में अगरतला और अन्य स्थानों से 310 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों और 34 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। जर्मनी में बधिर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीत लिए हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण और पुरुष वर्ग में अभिनव देशवाल ने रजत तथा शुभम वशिष्ठ ने कांस्य पदक जीता। पैरा ओलंपिक के आज चौथे दिन कई भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, निशानेबाजी और बैडमिंटन में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।